ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में संशोधन करके न्यूनतम वेतन दर में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। संशोधन के बाद ए श्रेणी के क्षेत्रों में निर्माण, सफाई, स्वच्छता और लदान उतरान के कार्यों से जुड़े अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 783 रूपये प्रतिदिन होगी। अर्धकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 868 रूपये प्रतिदिन होगी। कुशल लिपिक और निरस्त्र गार्ड के लिए न्यूनतम वेतन 554 रूपये प्रतिदिन। अत्यधिक कुशल कामगारों और सशस्त्र गार्ड के लिए न्यूनतम वेतन 1035 रूपये प्रतिदिन तय किया गया है। सरकार ने आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसी कुछ वेबसाइट्स की पहचान की है जो नागरिकों की निजी पहचान सहित आधार और पैन की जानकारी उजागर कर रही थीं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन टीम ने इन वेबसाइट्स में सुरक्षा में कुछ कमियां पाई हैं। संबंधित वेबसाइट के मालिकों को जरूरी कार्रवाई और साइट में परिवर्तन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। GII में भारत की उपलब्धि पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भी पहले स्थान पर है। संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों का गठन कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के भर्तृहरि मेहताब वित्त समिति के अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस के शशि थरूर विदेश मामलों की समिति की अध्यक्षता करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह रक्षा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल गृह विभाग से संबंधित स्थायी समिति के प्रमुख होंगे। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियां आयोजित करें। एक परामर्श में मंत्रालय ने राज्यों से रणनीतिक निगरानी बनाए रखने का अनुरोध किया है। मंकी पॉक्स की जांच के लिए संचालित प्रयोगशालाओं की सूची भी दी गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। राज्य सरकार ने 47,500 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन के साथ वर्ष 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुंबई की मझगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने शिवसेना UBT सांसद संजय राउत को भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया को बदनाम करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने राउत को शिकायतकर्ता मेधा सोमैया को मुआवजे के तौर पर 25,000 रूपये देने का भी आदेश दिया है। तेलंगाना सरकार खाड़ी देशों के श्रमिकों और प्रवासी भारतीयों की शिकायतों को दूर करने के लिए आज से हैदराबाद में एक प्रवासी प्रजावाणी काउंटर शुरू कर रही है। प्रवासी प्रजावाणी प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी, जो प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों की समस्याओं के समाधान और उन्हें सहायता प्रदान करने के एक मंच के रूप में काम करेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच कानपुर में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत अब तक इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।